हाँ सत श्री अकाल आदाब, वेलकम टू कोरे कागज टॉक्स के लिए। तो मैम, जिस तरह से आपको पता है कि हमारा जो कोरे कागज है, जब आपको सबसे पहले मैंने कॉल किया कोरे कागज के लिए, तो मैम आपको कोरे कागज नाम सुन के क्या दिमाग में स्पार्क किया कि किस चीज के रिलेटेड टॉक शो होगा या लाइव सीरीज?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाम ही इतना ब्यूटीफुल है और वुमेन्स डे स्पेशल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब कहते हैं कि वुमेन्स डे 1 मार्च को नहीं होना चाहिए। स्पीच में लोग कहते हैं कि एक ही दिन नहीं होना चाहिए, इसे हर दिन मनाना चाहिए। तो मुझे लगा यार वाओ, ये सिर्फ स्पीच में नहीं रह गया है, और एक लड़के ने, मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की कि आप इसे फेब से मनाते आ रहे हो, और एक्चुअल में ये चीज हुई कि सिर्फ 8 मार्च को ना मनाकर आप इसे हर दिन मना रहे हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एक लड़के ने ये इनिशिएटिव लिया है। नाम भी इतना अच्छा दिया है, कोरे कागज, जिसमें आप अपनी जर्नी को शेयर कर रहे हो, जो भी इसमें हम लोगों को लगता है कि हम अपनी लाइफ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपने ये इनिशिएटिव लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच मैम। हमारा यही मोटिव था, क्योंकि मैम लाइफ में काफी बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि इनकी किस्मत ही ऐसी थी कि सक्सेस रीच कर पाए, इनके लिए काफी चीजें आसान थी, बट ये लोग नहीं, कुछ लोग ये चीज नहीं समझते कि हम लोग भी अपनी कलम खुद उठा के कहते कि हम इन कोरे पन्नों का रंगीन करेंगे, एंड सबको एक सक्सेस नहीं मिल जाती, हर किसी को गलतियां और रुकावटें हर्डल्स देखने को मिलती है। तो हमारा यही मोटिव था कोरे कागज से उन चीजों को जानते। तो मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो। जैसे कि हम जानते हैं कि यू आर द फर्स्ट फीमेल डोगरी जर्नलिस्ट जम्मू से, एंड आपके काफी अच्छा इन्फो बक के नाम से एक इंपोर्टेंट एंड फीमेल रन चैनल है जेएनके का, तो हम थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे व्यूअर्स को।
कोर्स, मेरी अगर आप जर्नी की बात करो, तो मैंने कभी लाइफ में, पहली बात तो सोचा ही नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी। मैं एक बहुत ही साधारण सी एक म्यूजिक टीचर थी, और मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, और एक नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी, बच्चों को सिखाती थी। मैंने नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को म्यूजिक सिखाया है, एंड उसके अलावा मैंने बीएड तक के बच्चों को म्यूजिक, वहां पर क्या होता था कि मेरे को ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन सब्जेक्ट मिला था मायर कॉलेज में। वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैम ने कहा कि बीएड में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है ये सब्जेक्ट, तो अमर आप पढ़ा पाओगे? मैंने कहा यस मैम। तो मैंने बच्चों को वो भी सिखाया, तो मेरे लिए एक नॉर्मल सी लाइफ थी मायर कॉलेज में। उससे पहले मैंने एनडी इंटरनेशनल, सो एज अ म्यूजिक टीचर मैं बच्चों को सिखा रही थी, पढ़ा रही थी। बट कुछ लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने एज अ चैलेंज लिया कि नहीं, लाइफ में कुछ होना चाहिए। एक आया, कुछ मोड आया लाइफ में, मैंने स्विच किया अपने करियर को। देन कुछ फ्रेंड्स आए, उनके साथ सौरभ कल्याण इज देयर, सौरभ कल्याण मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बना, हमने एक चैनल स्टार्ट किया। करते करते करियर स्विच हुआ, वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ रिपोर्टर। फिर डोगरी के साथ एक अलग सा प्यार था, क्योंकि मेरी दादी बहुत, मेरी दादी जम्बौल हैं, तो अब नहीं है इस दुनिया में, तो हम राजपूत भी हैं, फिर कन्वर्टेड सिख हैं हम लोग, सभी कन्वर्टेड हैं वैसे तो, पर चौहान हैं हम लोग, तो दादी जम्बौल थी, उनको मैंने बचपन से डोगरी बोलते हुए, टिपिकल डोगरी जो रियासी के रहने वाले होते हैं वो लोग टिपिकल डोगरी बोलते हैं, दादी मेरी डोगरी बोलती थी, बाकी घर में माहौल सिख कल्चर, मतलब मिला जुला सब कुछ था, तो डोगरी बोल नहीं पाते थे क्योंकि शर्म आती थी बोलने में। ऐसे होता था यार क्या यार दादू दादू बोलते थे हम, क्या यार चुप करो, तो वो शर्म वो हया एक डोगरी बोलने में आती थी। अब स्कूलिंग मेरी बाहर हुई है, जम्मू में रहे नहीं, पापा आर्मी में थे, तो वो एक आर्मी बैकग्राउंड से होने के नाते वो एक डिसिप्लिन और अब मैं क्या बोलूँ, एक यू नो क्लास कह लो, कुछ भी कह लो आती थी, बट जम्मू में जब हम आए तो वो यहाँ का माहौल नहीं था उस तरह का। तो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे वो डोगरी से दोस्तों में जब आए तो वो लोग डोगरी बोलते थे, बट हमें लगता था कि क्या यार घराई से लोग हैं ये वो था, मैं इस चीज को एडमिट करती हूँ। बट जब मैं अपनी इस फील्ड में आई तो लगा कि नहीं यार हम गलत थे बचपन में, डोगरी में जो प्यार, वो जो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की फ्लेवर फूड में वो सब है, वो हमने मिस किया। देन मैंने सोचा कि नहीं यार अब हम वो चीज करेंगे जो हम बचपन में नहीं कर पाए। देन फिर उसके बाद रिपोर्टिंग में आ गए, फिर मुझे लगा कि नहीं ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर अगर हम लोगों तक पहुँचाएं जो बचपन में हमने मिस कर दिया, आज हम लोगों तक वो पहुँचाएंगे और अपनी गलती को सुधारेंगे। करते करते फिर रिपोर्टिंग में आई और फिर फर्स्ट फीमेल डोगरी रिपोर्टर बन गई।
काफी अच्छी जर्नी थी मैम आपकी, वो लाइन है ना कि मिठे नहीं डोगरे थे बोली थे खंड मिठे लोग डोगरे,
खंड मिठे लोग
वही फील्ड से आई। एंड किस तरह से आपने टीचर्स एंड जर्नलिज्म की फील्ड में स्विच किया, काफी अलग चीज है, क्योंकि हम हमें पता है कि जर्नलिज्म एक इजी टास्क नहीं है, कितना इसमें टाइम लगता है, एंड कुछ पता नहीं कि किसी वक्त स्टोरी आ जाए तो एक काफी स्ट्रेसफुल होता है इतनी शॉर्ट डेडलाइंस के ऊपर। तो मैम ये तो चीज है कि ये चीज आसान नहीं है, तो इन सारी चीजों में अगर मैं आपसे पूछूं आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम कौन था?
मेरी फैमिली, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि आपके बहुत सारे लेग पुलिंग रहती है, यू नो हर कोई रहता है कि आपको इस दुनिया में कोई भी सच बताऊं तो ग्रोथ करता हुआ आपको कोई नहीं देखता है, देखना ही नहीं चाहता आपको, सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली रहती है और बहुत कम दोस्त। कहने को आपको बहुत सारे, मैं आज भी बोलूंगी कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि मैं आपको बताती हूँ। एक बार मेरा बर्थडे था, आई थिंक 2018 या 17 की बात है, मेरा बर्थडे में एक दिन में मैंने 10 केक काटे थे और शाम तक मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मेरे घर वाले वेट कर रहे थे कि भाई घर आ जा, तेरा बर्थडे केक काटना है। तो और मेरा बर्थडे 4 मई को आता है और मैंने 14 मई तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो आप देखो मेरा फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है। तो वो भी दोस्त कहने को, मैं किसी को मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे दोस्त नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि दोस्त कहने को बहुत होते हैं आपके, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, पर सच्चे दोस्त जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं वो सिर्फ चंद हैं, बहुत बहुत कम हैं जो आपकी ग्रोथ पे खुश होते हैं, जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। सोचते सब अच्छा है पर बहुत अच्छा कम ही सोचते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरे पेरेंट्स हैं तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है। रात को 10-10, 11-11 बजे मैं घर आती थी तो मम्मा खाना ला रहे हैं, पापा कभी लेट भी हो जाऊं तो पूछते हैं कहाँ हो तुम, ठीक हो, तो बस फैमिली सपोर्ट सिस्टम है मेरा आज भी है।
काफी अच्छी सच में बात की, कहते हैं कि बातें करने वाले लोग काफी होते हैं, रात खाने वाले भी लोग होते हैं, बट साथ चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ये पॉइंट जितने भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में लोग चूज करना कितना इम्पोर्टेंट है। एंड मैम एक चीज आप भी इस पे मानेंगे कि सक्सेस लोगों के साथ ही रीच किया जा सकता है, मगर लोग सही होने चाहिए।
एग्जैक्टली
मैम, अब आता है आपसे सीक्रेट पूछने का टाइम। तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं, जो हमारे यंग एस्पायरिंग जर्नलिस्ट है तो उनके लिए मैम किस तरह से आपको जर्नलिज्म की फील्ड के बारे में, उन बच्चों को जो आना चाहते हैं जर्नलिज्म, आप उनको कैसे
उनको
कैसे समझाएंगे जर्नलिज्म की फील्ड के बारे में, मोटिवेट करेंगे
कि वो आए?
Yes.
इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले तो रिसर्च वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आप इस फील्ड में आने के लिए ऐसे ही आप सोचें कि वाओ मुझे लाइमलाइट में आना है, यहाँ पर आपको स्टारडम मिलेगा, वो एक अलग चीज है, नंबर वन। नंबर टू, आपका ये फील्ड इतना सीरियस है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ठीक है आपको इस फील्ड में आना है कि यार आपको लोग जानेंगे और ये सब होगा, वो एक सेकेंडरी थिंग है। नंबर वन, इस नंबर टू ये है कि इस ये फील्ड आपको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आप जो भी न्यूज दे रहे हैं, न्यूज लिख रहे हैं, आपकी बात लोगों तक जा रही है, तो लोग अल्टीमेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी पब्लिक, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो आपका एक आप एक फेस हैं, तो जो लोग आपको देखते हैं सुनते हैं वो कहीं ना कहीं आप पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बात को जब लोगों तक रखते हैं ना तो वो ना एक फेस बन जाते हैं आप पब्लिक के लिए। अब मैं हूँ आज, अगर मैं न्यूज या कोई भी चीज लोगों तक, स्टोरीज अगर लोगों तक ला रही हूँ तो वो लोग वेट करते हैं कि हाँ यार ये बंदी जब न्यूज देती है ना तो इसकी न्यूज जो है वो जेन्युइन। अब हमारे अपने पेज की मैं बात करती हूँ, कम डालते हैं बेशक, लेकिन हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। लॉकडाउन की मुझे बातें याद है, हमारे पास कुछ मैसेजेस आते थे लोगों के कि मैम आपके चैनल पे जो न्यूज डलती है वो एक्यूरेट होती है, मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, एक्यूरेट होती है और बहुत जल्दी डलती है। हम लोग कहते हैं हम आपके चैनल की जो न्यूज होती है वो बहुत जल्दी डलती है और बहुत एक्यूरेट होती है, हमारे पास वो आप कहाँ से लाते हो न्यूज? तो हम कहते थे कि हम वेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम पेज उस पे अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। हम ये रश नहीं करते कि यार हमारे पास न्यूज आई और हम फटाफट अपलोड कर दें, हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं सो दैट कि हमारे कंटेंट जो हम पब्लिक को दे रहे हैं, हमें ये नहीं होता है कि यार हमारे पास आया और हम लोग उसको अपलोड कर दें सो दैट कि हमें बाद में उसको डिलीट करना पड़े. तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक सिंपल सा टिप है कि पहले तो अपना माइंड बनाओ कि आपको इस फील्ड में आना है. ये ना हो कि आने के बाद आप बोलो कि बहुत टफ है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो बाद में आप अपना माइंड चेंज कर दो. सबसे बड़ी बात तो ये है कि फोकस्ड रहो कि आपको इस फील्ड में आना है, और नंबर टू ये है कि आपका डेडिकेटेड आपको होना पड़ेगा. ये बहुत ज्यादा इस फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगा किसी भी फील्ड के लिए, तब तक बात नहीं बनेगी. दैट्स इट. कंटेंट तीसरा है आपका, कंटेंट. जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा अच्छा, आप अपने पब्लिक को क्या दे रहे हो, तब तक बात नहीं बनेगी.
बिल्कुल मैम. तो हम इसी से अगर मैं बात करूं, जो आपने जम्मू में काफी अलग से एडवेंचर स्टार्ट किया इको बग के बारे में, तो आपको इसके रिलेटेड आइडिया कहाँ से आया? काफी अलग से एक चैनल था जिसमें आप फैक्ट्स बताते थे, इन्फॉर्मेशन बताते थे, तो हम इसका आपको कंसेप्ट कहाँ से आया, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई?
इसकी इंस्पिरेशन कुछ ऐसा है कि मैंने जब चैनल छोड़ा था द न्यूज नाउ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था कि मैं अपने दोस्तों के साथ थी, जिसमें रोशी मेरी फ्रेंड्स हैं, सोफिया और कुछ और मेरे दोस्त थे, राजीव भैया और पंकज सर वगैरह. तो हम लोगों ने कहा कि हमें अपना स्टार्ट करना है, और शुरू से मेरा था कि मैं अगर करूंगी तो अब नेक्स्ट जॉब नहीं करूंगी, मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना है. सडनली हम लोग बैठे हुए थे तो मुझे हुआ कि यार कुछ इन्फो के साथ कुछ अलग कुछ नाम करना है, और करना है तो मुझे इंफोटेनमेंट करना है, वो मेरा फोर्टे है. और क्योंकि मुझे न्यूज ये सब करना बहुत बोरिंग लगता है, हर वक्त कांग्रेस बीजेपी, ये मर गया, उसकी टूट गई टांग, टूट गई नाली, टूट गई ये, हो गया वो, हो गया, मैं फेडअप हो चुकी थी इन चीजों से. और कीड़ा वर्ड मुझे कहीं ना कहीं बग वो यूज करना था, और हमने पहले इसका नाम इन्फो कीड़ा रखा था. देन आई वॉज थिंकिंग कि यार किसी ब्यूरोक्रेट या किसी ऐसे बंदे के साथ हम इंटरव्यू करेंगे एंड हाई एंड वेलकम टू इन्फो कीड़ा, वो कैसा साउंड करेगा यार. तो उन्होंने कहा नो 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 नो, ये आइडिया ड्रॉप कर दो यार, ये बहुत वियर्ड साउंड करेगा. हाई एंड वेलकम टू इन्फो कीड़ा, दिस इज अमर चौहान. तो हमने कीड़े को ट्रांसलेट कर दिया बग. तो वो वहां से कीड़ा जो है वो बग बन गया, और बग थोड़ा अच्छा साउंड करता है. एंड उसको फिर डिजाइन करवाया कीड़े को, क्यूट सा कीड़ा चाहिए था मुझे जो थोड़ा सा नॉटी दिखे, तो वहां से वो कीड़ा जो है वो बग बन गया, और देन इन्फो बग का जन्म हुआ.
मेरे हिसाब से नाम की जर्नी सबसे ज्यादा अच्छी थी. तो मैम, एक चैनल आपने जीरो से स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली मैम आपने अब इतने अच्छे तक आप ऑडियंस तक रीच कर पा रहे हो. एक जीरो से आपने चैनल स्टार्ट किया, इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? अगर मैं बात आपसे करूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? क्योंकि ये होता है, हम लोग हार्डवर्क करते बट कंसिस्टेंट नहीं रहते, थोड़े टाइम बाद छोड़ देते हैं, कहते हमें सक्सेस नहीं मिला. तो मैम आप कंसिस्टेंट रहे, सबसे पहली बात आपकी है. आप मुझे बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने उसको ओवरकम कैसे किया?
सुनीत, ये क्वेश्चन मैं वेट करती थी मुझसे कभी कोई पूछे, और मुझे मैंने मैंने आई स्वेयर टू गॉड मैंने कभी नहीं सोचा था इतना जल्दी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा. मैं आपको शायद मैं इसका आंसर देने में थोड़ा लंबा खींच जाऊं, मैं कोशिश करूंगी मैं जल्दी आंसर दूं. आई स्वेयर मेरे को मैं वेट करती थी कि एक दिन आएगा और मुझसे जब कोई आंसर पूछेगा मैं इसका जवाब दूंगी. मैं आपको बताती हूँ, लॉकडाउन में हमने ज्यादा जो इस चैनल का जो थोड़ा स्टार्ट जो हुआ है, क्योंकि 2019 में कह लीजिए थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि तब हम इसको ज्यादा फोकस मेरा यूट्यूब पे था कि हम यूट्यूब पे इसके अच्छे अच्छे वीडियोस डालते थे, और क्वालिटी मेंटेन की हुई थी मैंने इस चैनल की. मैं और राजीव भैया बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, और मेरे बड़े भाई की तरह तरह नहीं, मेरे बड़े भाई हैं वो. हमने यूट्यूब से स्टार्ट की जर्नी, बहुत अच्छे अच्छे मेरे फ्लेवर्स 2.0 करके कुछ मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम शूट करते थे, डालते थे. बट हुआ ये कि कोरोना ये सब आया, और हमने कोरोना के अलावा कुछ था ही नहीं डालने के लिए, हमने कोरोना से स्टार्ट किया लॉकडाउन में. देन हुआ क्या कि एक एक करके जो मेरी कड़ियां थी वो टूटती थी. कड़ियां मीन्स मेरा जो टीम था वो एक एक करके टूटता गया. कोई बिजी था, कोई कुछ था, घर की प्रॉब्लम्स ये वो, एक एक करके वो कड़ियां टूटती गई. मैंने अपना ऑफिस शिफ्ट किया, मेरे घर के ऊपर एक रूम था वहां पर ये ऑफिस शिफ्ट हुआ, और उस ऑफिस में मैं, मेरा कंप्यूटर और मेरा इंफोबग और मेरी ऑनलाइन कुछ टीम थी। मैंने जैसे बताया वो कड़ियां धीरे धीरे टूटती गई, और होता क्या था कि मेरा वर्किंग आवर्स जो थे वो शुरू में 10 बजे से, हमने डिवीजन किया हुआ था कि तुम इतने आवर्स काम करोगी, तुम इतने करोगी करोगी। जब वो कड़ियां टूटती गई टूटती गई टूटती गई, उसके बाद क्या था कि वर्कलोड धीरे 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 मेरे ऊपर आता गया। मेरे ऊपर वो जो वर्कलोड था वो इतना धीरे धीरे आता गया, नो डाउट सबने बहुत किया, इतना किया कि आज इंफोबग खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जब सबकी, एक कहते हैं ना, बंदिशें थी, कोई आपके साथ कितना ही करेगा, उनकी भी सबकी मजबूरियां थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ कि आज इंफोबग जो यहाँ तक पहुंचा है वो सबकी बदौलत है। लेकिन हुआ ये कि एक लिमिट के बाद जब सबने हाथ खड़े कर दिया कि भैया आप कितना करें, हम बस करो, अब वो जो बस करो हुआ, मेरा वर्किंग आवर्स 18 आवर्स हो गया। यू वॉन्ट बिलीव बट ये सच बात है। वो 18 आवर्स मैं, मुझे होता था कि मैं अगर खाना खाऊंगी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पीछे करो यार पीछे करो, मत करो मम्मा बस बस करो। मुझे खाना खाना टाइम वेस्ट लगता था, मुझे वॉशरूम जाना लगता था कि भगवान मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, वॉशरूम नहीं जाना है मुझे। लिटरली वो 18 आवर्स का जो मेरा टाइम पीरियड मैंने इंफोबग को दिया, आज मैं भुगत रही हूँ। मेरा थ्रोट टोटली क्रोनिक लेरेंजाइटिस की मैं पेशेंट हूँ, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज है, खैर वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। उस 18, और वो डेली का था, मैं बहुत कम सोती थी उस दौरान, और बहुत सारी चीजें हुई करते 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 करते। मैंने लॉकडाउन में, मेरे 1100 फॉलोअर्स थे लॉकडाउन में, 1100 से मैंने लॉकडाउन जितने भी टाइम रहा, धीरे धीरे करते करते हम 10,000 में पहुंचे। बहुत कम स्पैन टाइम स्पैन था, बट ये है कि उसी लॉकडाउन में हमने बहुत राइज किया। मेरे यूट्यूब पे बहुत कम फॉलोअर्स थे उस दौरान, 150 की 100 ऐसे कुछ था हमारा लॉकडाउन इस पे यूट्यूब पे। वो मेरी बहुत टीम ने मेहनत की, और धीरे धीरे मेरे साथ लड़कियां जुड़ती गई जुड़ती गई, टीम का वो एफर्ट्स थे। करते 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 आज हमारे यूट्यूब पे भी 10,000 फॉलोअर्स हैं, और हमारी मोनेटाइज भी हो गई है। तो वो उस वक्त एक ऐसा टाइम मेरी लाइफ में आया कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस वक्त अगर अपने रूम में मर भी जाती ना, तो मेरे घर वालों को नहीं पता चलना था कि लड़की मर चुकी। मैंने इतना वहां पे हार्डवर्क किया था। तो वो आपने जो सवाल किया ना कि मतलब कैसा था वो आपने स्ट्रगल या जो भी, लिटरली आज मैं जब वो याद करती हूँ ना कि मेरा उस रूम की, वो जो रूम की जो जर्नी थी, मेरे को सीरियसली, मैं इतना इमोशनल और इतना अजीब फील करती हूँ कि यार मैंने क्या किया इस इन्फो बग के लिए। तो लिटरली मेरे को घूस बम्स आते हैं कि यार तुमने मतलब इतना काम किया और इस इंफोबग के लिए इसने तुम्हें दिया क्या है। तो मुझे आज फील होता है कि नहीं यार, इसने मुझे सच में दिया है, और मैंने क्या किया इंफोबग के लिए। और ये इंफोबग इज लाइक अ बेबी फॉर मी, मुझे लगता है कि नहीं ये बच्चा है मेरा, और मैं जो कुछ कर रही हूँ इसकी परवरिश के लिए कर रही हूँ। सीरियसली वो बहुत ज्यादा, वो एक टफ टाइम था मेरे लिए।
बट एक चीज है ना, सक्सेस आपका पे ऑफ हुआ ना, दिस इज समथिंग। एक कबीर जी का दोहे ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस मिलता है। जिस तरह से आपने कोविड में, अगर खासकर बात करें, काफी लोग थे जो कहते कि हम फ्री, हमारे पास कुछ करने को नहीं है, जो पूरा टाइम वेस्ट नहीं कहूंगा, अपने अपने तरीके से, अपने कोई गेम्स में या कोई किस चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करता था, आपने इसको एक अलग वे में लिया, आपने कुछ अलग से प्रोडक्टिव चीज की, एंड यस अब आपको इसका सक्सेस मिल रहा है। दिस इज समथिंग रियली मोटिवेटिंग। जो भी हमारे अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको ये चीज अच्छी लगेगी, एंड ये उनके लिए मैं क्या कहूँ, सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए किस तरह से। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सिंपली, इन्फोबग एक चैनल है, ठीक है, बट इन्फोबग कैसे चैनल बना,
उस वक्त जो लोग कहते थे ना यार हमारा टाइम पास नहीं होता, हम वो, मैं कहती थी भाई प्लीज मेरे पास आ जाओ मदद के लिए, मैं तुम्हें काम देती हूँ, ये मत बोलो कि हम फ्री बैठे हैं। तो जोक द पार्ट, बट सीरियसली उस वक्त इतना इतना हेक्टिक था मेरे लिए लॉकडाउन, तो मतलब बहुत 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 ज्यादा हेक्टिक था हमारे लिए, बहुत मुश्किल से निकाला लॉकडाउन।
तो मैम, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके अगर मैं प्लान्स पूछूं इन्फो बग के रिलेटेड, आपके क्या प्लान था, किस तरह से आप इसको और अलग सा एक तड़का डाल के जम्मू में इसको थोड़ा सा वीकनेस लाएंगे, या किस तरह से आपके प्लान है?
गुनीत, वो थोड़े से सीक्रेट्स हैं। मैं लाइफ में, मैंने कुछ चीजें सीखी हैं कि एक तो अपनी सैलरी किसी से मत शेयर करो, एक अपने प्लान किसी के साथ मत शेयर करो, तीसरी चीज थी वो मैं भूल गई वो मुझे याद नहीं है, बट हाँ अब आप इतने स्वीट हो तो आपके लिए मैं इतना जरूर बताऊंगी कि नाम इंफोटेनमेंट है, तो ऑलरेडी कुछ इश्यूज की वजह से मैं इसको इस चैनल के साथ जस्टिस अभी तक नहीं कर पाई हूँ, तो वो जस्टिस फ्यूचर में मैं करने वाली हूँ, ये मैं आपसे इतना जरूर शेयर कर लेती हूँ। तो इन्फोटेनमेंट नाम है तो डेफिनेटली इन्फोटेनमेंट लेकर आए।
थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए बताया ये। तो मैम अब ज्यादा टाइम ना लेते देते,
नहीं,
मैंने काफी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, आखिर मैं बस आपसे ये चीज पूछूंगा, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चंस ही ना हो जाए, बट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी एंड। कि मैम आपके लिए सारी जर्नी एक टीचर से, एक जर्नलिस्ट एंड जर्नलिस्ट से, देन इन्फो कीड़ा और इन्फो बग, तो मैम इसके लिए आपका गुरु मंत्रा क्या रहा? एक पॉजिटिव नोट के साथ गुरु मंत्रा क्या रहा, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए टेक अवे हो जाए, वो बेचारे इतनी देर तक लाइफ के एंड तक थे, तो उनके लिए गुरु मंत्रा है एंड में।
मेरे लिए गुरु मंत्र यही है कि मैं हमेशा हमारी लड़कियों से भी कहती हूँ कि जब कभी आप लाइफ में बहुत फील करते हो यार लो, मैं हमेशा मेरी आई थिंक हमारी टीम भी इस वक्त हमें देख रही होंगी, गुरु मंत्र यही है कि आप हमेशा यही सोचो आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को ये सोचो कि आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट, नोबडी इज परफेक्ट यू नो, बट गुरु मंत्रा का यहाँ पर ये मतलब है कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझो, यहाँ पर ये मतलब है राइट। जब कभी आप लो फील समझो लो फील करो तो वहां पर आप ये फील करो कि आई एम द बेस्ट, यहाँ पर आप मॉड्यूलेशन समझ रहे हो, वॉइस मॉड्यूलेशन मैं दे रही हूँ कि आई एम द बेस्ट, यहाँ पर ये मेरा लाइफ का यही, मैं आपको अपना सीक्रेट बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आप जब अपने से ऊपर किसी को देखते हो ना तो लगता है कि यार, अब किसी कंपटीशन की बात करते हैं, चलो आई विल गिव यू एन एग्जांपल राइट, हम किसी कंपटीशन में जाते हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं वहां पर, मुझसे कोई ऊपर कंटेस्टेंट मैंने देख लिया, वही मेरा मोरल डाउन हो जाएगा यार मैं नहीं जीत, हम अंदर सोचते हैं मैं नहीं जीत पाऊंगा, गया यार मैं तो इतनी तैयारी करके आया था मैं नहीं जीत पाऊंगा। वहां जिस दिन आप ये वाला मंत्रा अपनाओगे ना 100% आपका वो बूस्ट होगा कि नहीं यार आई एम द बेस्ट, कैसे नहीं जीतूंगा यार आई एम द बेस्ट, मुझसे बेटर कोई है ही नहीं, आपकी जो क्वालिटीज हैं आप उनको गिनो कि यार मुझ में ये क्वालिटी है मुझ में ये क्वालिटी है मुझ में ये क्वालिटी है, कैसे नहीं जीतूंगा यार आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट, आप अपने आप वो आपकी क्वालिटीज जब आप देखोगे, दूसरों को आप काउंट ही मत करो ना, आप सिर्फ अपने आप को देखो, आपकी जो क्वालिटीज है मत देखो दूसरे को, तो दैट्स द ओनली मंत्रा, फिर आपको फील होगा कि नहीं दूसरों को भी देखो जो उनकी अच्छी क्वालिटीज आप वो अडेप्ट करो अपने अंदर, दैट्स द ओनली मंत्रा। मेरे अंदर तो यही मंत्रा है, मैं कभी किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करती, मेरा कभी किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं हुआ, और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मेरा ये जिंदगी का मेरा खुद का एक ये फंडा है, मैं कभी किसी का खुद के साथ कंपैरिजन नहीं करती, और मैं दूसरों को भी बोलती हूँ भाई उसका कंपैरिजन तू मेरे साथ मत कर, मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे आप किसी के साथ कंपेयर करोगे कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटीज है वो मुझ में नहीं आ सकती।
बंदा अलग वैसे ही नहीं होता।
यस मैं जैसी हूँ भाई, मैं नहीं उसकी तरह बन सकती ना, अब आप किसी दूसरे जर्नलिस्ट को सपोज करो मुझसे कंपेयर, आप कैसे कर सकते हो किसी दूसरे जर्नलिस्ट को मेरे साथ कंपेयर, उसकी क्वालिटीज मुझ में नहीं आ सकती ना मेरी क्वालिटीज उसमें आ सकती है, तो आप कैसे बोलोगे कि अमर से बेटर तो वो है यार, उससे बेटर तो अमर है, कैसे भाई उसकी क्वालिटीज क्या मुझ में आ सकती है, क्या वो बंदा या वो बंदी मेरे जैसी बन सकती है या मैं उसकी जैसी बन सकती हूँ, नहीं बन सकती, मैं हूँ वो है, तो हम नहीं कर सकते कभी किसी से कंपेयर, आई एम द बेस्ट भाई, मैं जैसी हूँ मैं तो वैसी रहूंगी, वो जैसा है या जैसी है वो वैसी रहेगी, तो आप हाँ मेरी कुछ क्वालिटीज जो मुझे उसमें अच्छी लगती हैं, हाँ यार वो उसकी ना वो चीज बहुत अच्छी है मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं वैसी बनूं, या उसको अगर मुझ में कोई चीज अच्छी लगती है तो वो मेरी तरह ट्राई कर सकती है या कर सकता है, दैट्स इट। तो हमें कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हम जैसे हैं हम वैसे खुश रहे, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट पार्ट है, दैट्स
बिल्कुल मैम, आई स्टिल रिमेम्बर एक गीली मिट्टी का हमारा टॉक शो था हरप्रीत कौर एक नाम के साथ, तो उन्होंने यही सेम पॉइंट मेंशन किया था कि पॉजिटिव एफर्मेशन, अपने आप को अप्रिशिएट करना, कि किस तरह से लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं, अगर हम डेली उठ के अपने आप को थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे किस तरह से वो सक्सेसफुल रहेगा। एंड जो आपने बात कही दैट इज रियली अप्रिशिएबल कि किस हिसाब से हम अपने आप को थोड़ा, क्योंकि हम ये होता है ना कि हम अपने आप को एक बिल्कुल निचोड़ देते हैं कि हमें करना ही करना है, हम अगर नहीं कर पाते तभी अपने आप को निचोड़ देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं। आपकी बात बहुत सही है, अपने आप को पॉजिटिवली कंफर्म करना चाहिए यस वी कैन डू इट, एंड अगर नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, हमने सीखा ही तो है।
वही है ना, हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए।
बिल्कुल, कंपैरिजन से क्रिएटिविटी खराब होती है, कंपैरिजन से हमें सिर्फ सीखना चाहिए। आपकी बहुत अच्छी बात है। तो मैम एक एंड में मुझे कोट याद आया कि एक काफी प्यारा कोट था, मैंने एक मूवी में सुना था कि बेहिम्मते ने जिरे शिकवा करन मुकदरा था, उगन वाले थे उपेंदे ने फाड़ के सीना पत्थरा था। जिन्होंने ग्रो करना होता है, एक मूवी के नाम मेरे हिसाब से आमिर खान की, जिसमें उसने कहा था कि सक्सेसफुल पीपल या सक्सेसफुल बच्चे जो होते हैं वो एक सोडा के ग्लास में बबल की तरह होते हैं, जो भी कर लो वो बबल ने ऊपर आना ही होता। तो यही
आना ही होता है,
हम अपने आप को डीमोटिवेट ना करके पॉजिटिवली अस्सुम करें एंड बोले कि यस वी कैन डू इट, आज नहीं तो कल। इसी के साथ मैम अभी हम सारे अपने व्यूज को बाय बोलेंगे। थैंक यू सो मच अम्मा चौहान मैम फॉर जॉइनिंग द सन फॉर एक अगस्त टॉक शो।
जाने से पहले एक पोइट्री मैंने लिखी थी, मैंने सोचा था उसी से स्टार्ट करूंगी। कुछ लाइफ जब स्टेबल नहीं थी मैंने ये तब लिखी थी, ये कुछ इस तरह से लाइन थी। जिंदगी में मेरी ऐसे कई मोड़ आए, कभी मिले अपने कभी मिले पराए, हर एक को आजमा कर देखा, हर एक ने ही मेरी आंखों में आंसू लाए। ये आगे भूल गई मैं, एक्चुअली लेट हो गया था तो मैं डायरी ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं। ये था जिंदगी में मेरी ऐसे कई मोड़ आए, कभी मिले अपने तो कभी मिले पराए, हर एक को आजमा कर देखा पर हर एक ने ही मेरी आंखों में आंसू लाए। आगे भूल गई। चलो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो आई विल ट्राई टू नॉट भूले ना।
मुझे सुनने को मिली, हमें इतना ही अच्छा लगा एंड काफी अच्छी आपने चीज बोली कि कभी मिले अपने कभी किसी ने आंसू लाए, अगर मैं ठीक।
हां काफी अच्छी, मैं भूल गई, आगे बहुत अच्छी थी, बट एनीवेज फिर कभी ट्राई करेंगे।
थैंक यू सो मच अमर मैम फॉर कमिंग लाइव विद अस,
इट वाज प्लेजर यार एक्चुअली।
थैंक यू सो मच मैम, दिस इज योर होस्ट विनीत साइन।
Thank you. Bye. Take care.